वला यहज़ूब का कौलुहु, ए नबी इनकी बातें आपको गमगीन ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों से गमगीन होते थे क्योंकि इंसान थे ना, रोबोट होगा जिसको किसी की बातों का को कोई असर ही नहीं होता, लेकिन जो भी इंसान होगा चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई बात उसको गमगीन भी करेगी, कोई परेशान भी करेगी, कोई बात उसको खुश भी करेगी। तो इसी से पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे। हम ये सोच लेते हैं कि वो तो पता नहीं इंसान ही नहीं थे ना, सारे गम और सारी परेशानियां हमारे ही होती हैं, उनको तो कोई शायद चीज परेशानी भी होती थी तो उनको कोई परेशानी ही नहीं होती थी, ऐसी नहीं है बात। वो भी इंसान थे और उनको भी परेशानियां लाहक होती थी, भूख भी उनको लगती थी, प्यास भी उनको लगती थी, कोई बीमारी भी होती थी तो उसकी तकलीफ भी उनको होती थी, जख्म भी उनको लगता था तो तकलीफ पहुंचती थी। तो ऐसे ना सोच लिया करेंगे उनको कुछ होता ही नहीं था, नहीं। तो गम उनको भी लगता था, जैसे हमें फील होता है उनकी भी फीलिंग्स थी। तो उनको अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि ए नबी आप गम ना करें। से पता चलता है अल्लाह ताला के जो करीब लोग हैं उनको दुनिया में कोई चीजें गमगीन कर सकती हैं, और आपका गम असल में किस चीज का था, ये था कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं मान रहे। फलअल्लक बाखिउ नफ्सक अला आसारिहिम, हम हमेशा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला तसल्लियां देता था अपने नबी को, नबी आप अपने आप को हलाक कर देंगे इनके पीछे अफसोस कर करके, कि क्यों नहीं ये बात मानते। तो आप गम ना करें, जो ये बातें कहते हैं, ये जो बातें करते हैं, फिर ठट्टा करते थे, मजाक करते थे, बातों को कि आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देते थे, तो फरमाया इन्नल इज्जत लिल्लाह जमीआ, इनकी बातें आपको गमगीन ना करें, इसलिए कि सारी इज्जत, इज्जत का मतलब इज्जत भी होता है जो हम जिसको इज्जत कहते हैं ग्लोरी, और इज्जत का मतलब गलबा भी होता है, सारा गलबा तो अल्लाह के हाथ में है और सारी इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जो वो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि अंबिया को लोगों ने सताया, बातें की, उनसे गमजदा भी हुए, लेकिन याद रखें कि किसी के मजाक उड़ाने से या बातें करने से आपकी इज्जत कम नहीं होती, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है, इन्होंने थोड़ी इज्जत देनी है तो इज्जत मिलेगी, इज्जत तो अल्लाह ने देनी है, वो जिसको इज्जत दे दे कोई उसको जलील नहीं कर सकता, और जिसको जलील करते कोई उसको इज्जत नहीं दे सकता। अबू जहल वहां पे इज्जत वाला बना फिरता था, जलील हुआ ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बातें भी बनाई, लेकिन आपकी इज्जत ही इज्जत है। तो इस चीज से दिल थोड़ा ना किया करें, उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया, उन्होंने मेरे बारे में बातें कर दी, वो ऐसा कह रहे थे, और इतने डिप्रेस होके बैठ जाएं कि बस फिर अब कोई काम करने का ही जी नहीं चाहता, और अब मैं क्या करूं, और अब वो मुझे इस तरह कहते हैं, नहीं, इन्नल इज्जत लिल्लाही जमीअ, वो समीउल अलीम, वो सुनने वाला भी है जानने वाला भी, उसको पता है किसके ऊपर कौन क्या बातें बना रहा है, वो सुन रहा है और वो जानता भी है किसके दिल पे क्या गुजर रही है, इसमें ढारस है अल्लाह की तरफ से, तसल्ली है सब लोगों को जो अल्लाह ताला के दीन पे चलने की वजह से सताए जाते हैं, उन सब के लिए ढारस है। याद रखिए, जब आप अल्लाह के प्यारे बनना चाहेंगे ना, जब आप अल्लाह को खुश करना चाहेंगे, जब अल्लाह की इताअत की तरफ आएंगे, मसलन आपने सोच लिया मैंने औलिया अल्लाह बनना है, आपने सोच लिया मैंने आज से तकवा इख्तियार करना है, मैंने आज से वो कोई काम नहीं करना जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो, और मैंने भाग भाग के वो काम करने हैं जिनमें नेकी हो, आप आज से मुत्तकी बन गए, ठीक है, अब लेवल्स तो आप अटेन करेंगे लेकिन आज से आप मुत्तकी हो गए। अब आप निकले, आपने जो शुरू किए, जो भी अपने अल्लाह की फरमाबरदारी के काम या गुनाहों से बचने का आपने जो इरादा कर लिया, अब आप जब अमली मैदान में आएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज होंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या तुम शुरू हो गई हो, ये क्या तुम्हें, बाद गिले शिकवे भी शुरू कर देंगे, तुम्हारे पास तो अब टाइम ही नहीं, तुम तो ऐसे, तुम तो इधर की हो गई हो, तुम तो एक्सट्रीमिस्ट हो गई हो, तुम तो ये हो गई हो, बहुत नाराजगियां भी होंगी, गिले शिकवे भी होंगे, बातें भी बनाई जाएंगी, मजाक भी किया जाएगा। उसके बाद आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप ये कहें कि छोड़ो सब कुछ चीज को, मैं नहीं किसी की बातें सुन सकती, मेरी दोस्तें तो मुझे छोड़ रही हैं, मेरे रिश्तेदार तो मुझसे नाराज हो रहे हैं, सबको मुझसे गिले हो गए हैं। क्या फायदा है इसका, ऐसे दिन का मैं सब चीज छोड़ती हूँ। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने ये कह दिया कि अब अल्लाह के वली बनना है, दुनिया नाराज होती है तो होती रहे, मुझे नहीं परवाह। वो गिले करें, शिकवे करें, वो मूड ऑफ करें, आई डोंट केयर। उनको अच्छा लगे या नहीं लगे मेरा ये सब कुछ करना, मैंने तो अपने अल्लाह को राजी करना, ये दूसरा रास्ता हो सकता। सबके पास चॉइस है, वो अपने लिए क्या रास्ता चूज करते हैं। अल्लाह सुन लो, लोगों सुन लो ये बात, अल्लाह जब भी आता है ना तो अनाउंसमेंट, अब जैसे वो एयरपोर्ट पे भी एक खास किस्म की एक बेल सी होती है, वो टिंग टोंग करती है, तो फिर उसके बाद वो अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं। वो एक इस तरह मस्जिदों में कहते हैं, ख्वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, जरूरी ऐलान, वो ये है ना, ये अला है, ठीक है। अला सुन लो सारे लोगों, पहले हमें बात बताई गई, इन्ना उलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम ला, जैसे उनकी एक अनाउंसमेंट हो रही है, अल्लाह के दोस्तों को कोई नहीं खौफ और ना गम होगा। अब क्या कहा जा रहा है, सुन लो, इन्ना लिल्लाहि मन फिस्समावाति व मन फिल अर्ध, बेशक अल्लाह ही के लिए जो आसमानों में और जो जमीन में। क्या मतलब, यानी अल्लाह ही मालिक है जो आसमानों में और जमीन में, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही का इख्तियार है, सब कुछ उसका ही है। ये तुम तो जितने भी बने फिरे रहो के ये इज्जतें हमारी, ये दौलतें हमारी, ये जायदादें हमारी, ये औलादें हमारी, ये घर हमारे, ये मुल्क हमारा, ये फलां हमारा, सब कुछ तो अल्लाह ही का है, कुछ भी हमारा नहीं है, अल्लाह का है, और उसने दिया हुआ हमें कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और हमने वापस उसी के पास चले जाना, और वापस हमारी सब चीजों ने भी उसके पास चले जाना, तो किसका हुआ। लिल्लाही मीरासुस्समावाति वल अर्ध, मीरास तो उसकी है, वापिस हम मर जाएंगे फिर उसके बाद, फिर उसके पास, फिर वो आ जाएंगे, अगर कोई और लेगा तो उसके बाद किसका, असल में किसका। तो अल्लाह ही का है, जब जब ये बात का यकीन दिल में आ जाए कि सब कुछ अल्लाह ही का है, अच्छा तो फिर आप मांगेंगे किससे। अगर आपको इनमें से कोई चीज भी चाहिए, आइंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास चाबियां हैं गैब की, जितने भी खजाने हैं, जितनी भी इज्जतें हैं, जितनी भी दौलतें हैं, जितनी भी शिफा है, जितनी भी सेहत है, औलाद है, जो भी है, सब कुछ के खजाने उसके पास हैं, और इंदहु मफातिह, उसके पास चाबियां हैं, चाबी वो खोलेगा तो आपको कुछ मिलेगा, वो ना दे तो कोई नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं समझ आती, उसका है सारा कुछ, आप जाके कहीं और से मांग रहे होते हैं, वो दे देगा, वो दे देगा मेरे मसले को, वो हल कर देगा, मसले का हल भी उसके पास ही है, तो सब कुछ जो जमीन और आसमान में उसका ही है। अच्छा ये आयतें भूल जाती हैं उस वक्त, उस वक्त इंसान को लगता है ये मुझे देगा, ये शिफा यहां से मिलेगी, औलाद इधर से मिलेगी, मसले का हल इधर से मिलेगा, शौहर की मोहब्बत का वो है वो इधर से मिलेगा, महबूब कदमों में इधर से मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या, और कहीं कहीं के वीजे मिलने हैं, कहीं के पासपोर्ट मिलने हैं, वो भी कहीं से मिलेंगे, सब चीजों के लिए तो आपने कुछ और रख लिया, तो फिर अल्लाह ताला किस लिए। वमा यत्तेबिउल्लदीना यदउना मिन दूनिल्लाहि शुरकाء, अगर इसको पीछे से जोड़ा जाए ना, इसके डिफरेंट मीनिंग्स में आपको बताती हूँ, अगर इसको पीछे से जोड़ा जाए तो फिर बनता है कि अल्लाह ही का जो आसमानों में भी है और जो जमीन में भी है, और जो पैरवी करते हैं, जिनको पुकारते हैं अल्लाह के सिवाय शरीक बना के, वो भी अल्लाह ही के हैं, वो भी अल्लाह ही के मखलूक है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माँ का माना ये लिया जाए कि अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, और वो क्या है जिनकी तुम पैरवी करते हो, जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवा शरीक, वो क्या चीज है, वो कुछ भी नहीं है अल्लाह के आगे। और फिर अगर माँ का माना नहीं कर लिया जाए, माँ नाफिया लिया जाए, तो वो फिर भी क्या बनेगा, और नहीं वो पैरवी करते जो वो पुकारते अल्लाह के सिवा शुरका शरीकों को, यतबीउना इल्ला ज़न, नहीं है वो मगर ज़न, मगर वो गुमान है, नहीं वो पैरवी, जो भी वो जिनकी भी वो पैरवी करती है ना, जिनको भी वो पुकारती है अल्लाह के सिवा शरीक बना के, वो उनकी नहीं पैरवी करते, वो सिर्फ जन है, ये गुमान है जिसके पीछे वो भाग रहे। समझ आई बात? तो ये तीनों तरह से माँ का माना किया जा सकता है, और तीनों ही सही है कि ये कुछ भी नहीं है और ये भी अल्लाह ही की मखलूक है, और ये क्या चीज है जिनकी तुम पैरवी करते हो, जिनके पीछे तुम जाते हो, जिनको तुम पुकारते हो। और पुकारना, मैंने आपको बताया था, दुआ करना किसी से, ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और से को पुकारना ऐसे कि जैसे या अली मदद, ये क्या है, या रसूल अल्लाह मदद, ये क्या है, या खिजर, वो कहते हैं वो खिजर अलैहि सलाम की ड्यूटी पानी पे है, तो कोई तूफान आए तो उनको पुकारो अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर वो गार्डियन एजेंट्स को भी पुकारते हैं। वो कहते हैं वो जो मुशरिक हैं, ये कहते हैं ये जो हमारे गार्डियन एजेंट एंजल है ना, ये जो हमारे साथ फरिश्ते हैं, उनको ही वो मदद के लिए पुकार लेते हैं। तो नहीं, आपने जब दुआ की ना, तो दुआ के पीछे पूरा अकीदा है, दुआ के पीछे जब आप दुआ मांगते हैं तो आपको ये बिलीफ है इसके पीछे कि ये मेरी सुन रहा है, जाहिर सुन रहा है तो आप मांग रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी कि आप दीवार को कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये सुन रहा है, ये जिंदा भी है, ये सुन भी सकता है, और ये मेरी दुआ को कबूल भी करा सकता है या कर सकता है, तो इसके पास ये पावर भी है, चाहे अल्लाह से ही इसने करानी। जैसे वो लोग कहते थे ये हमारे अल्लाह के सामने हमारे सिफारशी है, तो चाहे अगर आपका ये भी अकीदा है कि ये मेरी अल्लाह के सामने रखेगा, मेरी इसके सामने, इसकी अल्लाह के सामने, तब भी शिर्क है। आपने उसको सुनने वाला समझा जबकि वो दुनिया से जा चुका, आपने उसको हाजिर नाजिर समझा, आप यहां बैठे हुए और पुकार रहे हैं या अली मदद, यानी आपको पता है कि फिर इसका मतलब आप ये समझते हैं कि हजरत अली जिंदा है, या हजरत अली यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात। फिर इसके बाद आपने ये भी अकीदा रखा कि उनके पास इतनी पावर है, इतनी कुवत है कि अल्लाह से मनवा लें जो मर्जी बात, मैं अल्लाह से कहूंगी तो वो तो नहीं मानेगा, लेकिन ये कहेंगे तो फिर वो मान लेगा, तो इनके पास इतनी पावर है, इतनी कुवत है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं, और मैंने आपको कितनी और दफा बताया हुआ है अहादीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। तो आपने उसको कादिर भी माना, उसको सुनने वाला भी माना, उसको जिंदा भी माना, और आपने उसकी उसके आगे अपनी बंदगी का भी इजहार किया, अपनी आजजी का भी इजहार किया, क्योंकि किसी को पुकारना दुआ के लिए, दुआ मांगते वक्त ये इबादत है, आपने किसी की इबादत भी कर ली, तो अब और क्या रह गया फिर, ये तो शिर्क होता है। तो जब आसमान और जमीन में आपने ये, अगर आयत के ऊपर ईमान है, अगर इस आयत पे ईमान है, अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ध, ये पढ़ने के लिए या सिर्फ ऐसे ही गुजर जाने के लिए, या ईमान रखने के लिए? अभी हमने कहा कि जो अल्लाह के औलिया होते हैं वो ईमान वाले होते हैं, मानते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते नहीं है कि पढ़ लिया हाँ अल्लाह का है जो आसमान और जमीन में, उसके बाद जाके मैं धागे कहीं और बांध रही हूँ, ये मुझे देंगे बच्चा, ये मेरी मुश्किल कुशा है, ये मेरी मुश्किलें आसान करेंगे, या गौसे आजम, ए फरियाद रस, गौसे आजम मतलब फरियाद रस, मेरी फरियादों को सुनने वाले, फिर उधर चल पड़ेंगे हम, है वैसे सब अल्लाह का, लेकिन हम जाते उधर मांगने, हमने अल्लाह से नहीं मांगना, हमने किसी और से, और क्या ये शिर्क बताएं। आज मिजारों का कारोबार इतना ऐसे ही नहीं चल रहा, अगर ये इन चीजों पे ईमान हो तो कैसे उनका कारोबार चले। तभी हो ना इल्ला तन्ना, ये जन है, सिर्फ गुमान है, सिर्फ अटकल पिचू बातें, व इनहुम इल्ला यखरुसून, सिर्फ कयास आराइयां है, जन है और कयास आराइयां, इधर के उधर जोड़ दिए, उधर किधर कहानियां बना ली, भाई उनकी बेस क्या है, उनकी कोई दलील है? अब देखे ना, कुरान की एक दलील है कि ये सच्चा है और ये प्रिजर्व्ड है, ये सेव है, जब से ये उतरा इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। हदीस की दलील है, उसकी चेन्स हैं पीछे पीछे तक जाती है, हमें पता चलती है कौन से रावी ने किससे सुना, किसने किससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे, उसके ऊपर पूरी तहकीक है, कौन किससे मिला था, ये किसने सिर्फ उसका बात सुनी थी, वो किस वक्त पैदा हुआ, किस वक्त फौत हुआ। वो अगर कह रहा है मैंने फलां से सुना, तो क्या वो इस इलाके में गया था, क्या वो उस जमाने में था। इतनी बातें हैं ना उसके ऊपर, इतनी तहकीक हुई भी है कि यानी एक-एक चीज उसकी खोल के निकाल ली गई है, कि रावियों की भी पूरी पूरी जिंदगियां लिखी हुई हैं। अब चलो उसकी दलील मिलती है, कुरान की दलील है, आप मुझे बताएं इन किस्सों की क्या दलील है। वो उसने इन यहाँ पे आके मांगा तो ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या ऐसी कहानियां कि कुछ और ही बना के रख दी, फिर वो खुदा ही बना दिया। तो ये जो सारी कहानी है इनकी कहाँ से दलील है, सिर्फ मुंह की बातें है ना। किसी ने भी कोई आज बैठ के कोई बात घड़ ले, कोई किसी को एक कब्र बना के कह दे कि यहाँ पे तो बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे, वो गुजरे हैं, ये उनकी कब्र है, वो तो जो मांगते थे मिलता था, जिसकी कहते थे वो उसकी उनकी दुआएं कबूल होती थी, आए आप भी यहाँ पे करें, 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे। अब कहानी बनाने को क्या, अब मैंने एक कहानी बना दी और साथ 4 झंडियां लगा दी, अब इसकी क्या दलील है, कि कुछ ही नहीं पूछना, 2-4 इधर उधर की बातें भी साथ कहानी में जोड़ दी, जो कि आपको लगे कि बड़ी मेसमराइजिंग है, बड़े आप मुतासर हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सारी बातें जानने कयास तो आराइया। इसी तरह आप मुशरिकों को देख लें, कहानियां ही कहानियां बनाई हुई, पीछे उनके कुछ नहीं है। अब वो किसी ने कह दिया वो ईसा अलैहि सलाम को सूली पे चढ़ा दिया गया, ऐसे हो गया, फिर उसके बाद कहानी बनाई हुई है, फिर उसके बाद वो मिले, फिर फलां हुआ, फिर वो वापस आए, फिर रेजरेक्शन हुआ, ये कहानियां, फिर राम सीता की कहानियां है ना, उनके पीछे क्या है बताएं, किससे है। बस हु अल्लज़ी जअला लकुम अल्लैला लितस्कुनू फीह वन्नहारा मुबसिरा, जबकि अल्लाह वो जात है जिसने रात और दिन का निजाम बनाया, रात को तुम्हारे लिए सुकून के लिए और दिन को रोशन बनाया ताकि तुम अपने काम काज कर सको। इन्ना फी ज़ालिक लआयात लिक़ौमी यस्मऊन, इसमें आयात है, निशानियां उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। सुनते हैं क्यों कहा यहाँ, इसलिए कि वैसे तो तुम्हें देख के ही ये सब चीज पता चल जाती, अगर देख के नहीं पता चलती तो सुन ही लो, सुन के ही किसी को इंसान को कुछ समझ आ जाती बात, सुनना भी नहीं है अगर देखने में, तो वैसे ही अंधे बने हुए हैं, रोज रात और दिन को देख रहे हैं, कुछ निशानी नजर नहीं आती, तो ना देखना है और ना सुनना है। वो सुनेगा कोई तो उसको कोई समझ आएगी बात, निशानी पता चलती है, गौर व फिक्र करे फिर उसके बाद। तो बहुत सारे सबक है इसके अंदर, किसने रात बनाई, किसने दिन बनाया, वो कैसा होगा जिसने रात और दिन बनाया, उसकी ताकत कैसी होगी, उसकी कुदरत कैसी होगी, ये निजाम कैसे इतना बैलेंस्ड चल रहा है और सदियों से चल रहा है, क्या किसी बुजुर्ग ने बनाया, किसी बुत ने बनाया, किसी देवी देवता ने बनाया, किसने किया ये। और याद रखिए कुराने पाक जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं दलाइल देता, ये नहीं बात बताता कि एक कोई हस्ती है जो खुदा है, एक कोई जात है जो खुदा है। कुराने पाक ये दलाइल देता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था, तौहीदे अलूहियत, अलूहियत में इबादत में तौहीद, कि सिर्फ वो ही है, एक ये बात बताता है हमें कि अल्लाह ही है सिर्फ, और जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाए, और दूसरे वो अकेला है। क्योंकि ये चीज को साबित करना, अभी ये मेरी बात जरा गौर से सुन लें, ये चीज को साबित करना कि एक खुदा है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, इसलिए क्योंकि ये हमारे अंदर बिल्ट इन है, बाय डिफॉल्ट है हमारे अंदर, हम पैदा इसके साथ हुए होते हैं कि एक कोई खुदा है, कोई ना कोई हस्ती है, कोई पावर है। कुरान बताता है, हमें दलाइल देता है कि उसी की इबादत करो, और वो अकेला है, उसके साथ और नहीं है, उसके कोई शरीक नहीं है, इस चीज के ऊपर हमें बताता है, दलाइल देता है। अब अगर हम किसी को मनवाने लगे हैं ना, तो उसको ये मनवा लेने में कोई कमाल नहीं है कि एक खुदा है कोई, या एक छोड़े कोई खुदा है। हमारा ज्यादा जोर इसके ऊपर रहता है, और बहुत सारे लोगों का इस पे रहा है कि बस वो ये किसी को मनवा लें कि खुदा है, एक हस्ती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर कोई जन्नत में नहीं जाएगा कि कोई खुदा है, क्योंकि ये बात तो हिंदू भी मानता है, वो भी कहता है कि ये बोलता है, लेकिन कोई खुदा है इससे ऊपर। बात ये है अलूहियत इबादत की जब बात आ जाती है, और बात ये कि जब तौहीद की बात आ जाती है कि वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, उसके कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई जो उसने अपनी पावर्स इसको भी दे दी है, थोड़ी सी इसको भी दे दी है, वो कहते हैं ऊपर तो एक ही है, उसने ही इनको पावर्स दी है, नहीं उसके पास ही सारी पावर्स हैं, सब उसके बंदे हैं, उसकी मखलूक है, और इबादत के लायक सिर्फ वो है। ये है चीज जो हमें रीइंफोर्स करने की जरूरत होती है। हाँ, बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान की जो बिल्ट इन चीज है ना, बिल्ट इन जो कॉन्सेप्ट जिसके साथ इंसान पैदा हुआ है, उसके ऊपर गर्द पड़ जाती है, उसके ऊपर गफलतें आ जाती हैं, उसके ऊपर दुनिया की और चीजों के इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो उस चीज को भूल जाता है। इसीलिए कुरान तज़कीर करता है, उस गर्दो गुबार को हटाता है और वो ओरिजिनल चीज अंदर से निकालता है जो हमारे अंदर है। तो ये याद दिहानी कराता है, ये नहीं कर रहा कि आपको ये बताए कि कोई हस्ती है, वो तो इंसान को पता है कि कोई हस्ती है, ऐसे ही तो नहीं वो हर इंसान ने कोई ना कोई खुदा बनाया। इवन जो एथिस्ट है वो भी नेचर को कहता है कि वो खुदा है। तो ये बात बस समझने की थी। قال اتخذ الله ولدا سبحانه قال اتخذ الله ولدا, वो कहते हैं कि अल्लाह ने एक बेटा बना लिया या औलाद बना लिया, वलद में औलाद आ गई सारी, किसी ने बेटा कहा, किसी ने बेटियां कह दिया, सुबहाना वो पाक है, इससे उसको बेटे की क्या जरूरत, हुवल गनी वो तो बेनियाज है, वो किसी चीज का भी मोहताज नहीं है। बेटे की तो मोहताजी होती है किसी को कि बेटा उसकी कोई आगे ममलिकत संभाले, कोई बादशाह है तो बेटा उसका जानशीन बने, वो क्या, वो तो हई और कयूम है, उसको बेटे की क्या जरूरत। इसी तरह बेटे की उसको जरूरत है जिसका कोई बुढ़ापा आए तो वो कहे मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं, उसके अंदर कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं। औलाद की जरूरत उसको होती जिसमें कमी हो, वो खुद सरवाइव नहीं कर सकता, वो खुद फिर अपनी जरूरियात नहीं पूरी कर सकता, तो उसको औलाद की जरूरत है कि बेटे बेटियां होंगे तो मेरे काम आएंगे, तो मेरी आगे या नस्ल चलेगी, इसलिए इंसान लेता है ना, या मेरे बाजू बनेंगे, या मेरे घर की रौनक बनेंगे, या मेरी एक जरूरत है, उसको जरूरत नहीं, ना उसको बाजू चाहिए, ना उसको किसी चीज की एहतियाज है, वो तो खुद हर चीज का इख्तियार रखता है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, उसके पास तो उसका तो सब कुछ ही है जो आसमानों और जमीन में, सबकी मिल्कियत उसकी है, सबका इख्तियार उसके पास है। इन इंदकुम मिन सुल्तान बिहाजा, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है इसकी या नहीं तुम्हारे पास कोई दलील उसकी, दोनों ही माने, नहीं तुम्हारे पास कोई दलील इसकी, इसकी तुम्हारे पास कहीं कायनात में आप देख लें कोई दलील नहीं, कोई पैगंबर ऐसा हो जिसने आके कहा हो ऐसी बात कि उसकी कोई औलाद है, या किसी पैगंबर ने ये कहा कि मैं उसका बेटा हूं, कहीं पे भी नहीं। कौन सी ऐसी किताब होगी जो आसमान से आई जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह की कोई औलाद है, तो कहीं से कोई सबूत मिलता ही नहीं। अतकुलून अल्लाह ही माला तालम, क्या तुम अल्लाह पे वो बातें करते हो जो तुम नहीं जानते। और याद रखे ये वाली बातें पता है कौन कहलवाता है, पहले हमने पढ़ा था गालिबन सूरह बकरा में कि शैतान कहता है कि अल्लाह के ऊपर वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते, ये शैतान कहलवाता है। कभी कहता है अच्छा बताओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान आके कहता है अच्छा बताओ फलां चीज किसने बनाई, वो कहता है अल्लाह ने, वो किसने बनाया, वो अल्लाह ने, वो किसने बनाया, वो अल्लाह ने, जब कर करके ऐसे फिर कहता है और अल्लाह को किसने बनाया, तो समझ लेना कि ये शैतान है, वो तुमसे वो बातें कहलवाता है जो तुम नहीं जानते बगैर इल्म के, फिर इंसान सोचने शुरू हो जाता है इस पे। तो इंसान मुंह से वो बातें ना निकाले जिसको कोई, उसको इल्म नहीं है, फिर भी वो उसके ऊपर तबसरे करने लगता है, फिर वो जहालत के बिना पे बात करता है, और ये भी जहालत है ना, बगैर इल्म की बात है कि उसकी कोई औलाद है। क्या सबूत है भाई तुम्हारे पास? कोई सबूत ही नहीं। और मैंने आपको पहले बताया था ना कि हदीसे कुदसी है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, और उसका गाली देना ये है कि वो मेरी औलाद ठहराता है। कुल कह दीजिए इन लदीना यफ्तरून अल्लाह कदीबा ला युफ्लिहून, कह दीजिए वो लोग जो अल्लाह के ऊपर झूठ घड़ते हैं वो कभी फला नहीं पाएंगे। ये झूठ घड़ना है, क्योंकि ये इफ्तरा क्या होता है, जो खुद ही बनाई हुई बातें, मन घड़त बातें, खुद साहता बातें, इनकी कोई बेस नहीं है, उनका कोई सबूत नहीं है। लेकिन इंसान को भी कोई कह दे ना, कोई उसका औलाद, कोई उसका बच्चा नहीं है, और कहते ये इसका बच्चा है, तो वो भी बुरा मानता है कि तुमने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। हालांकि हम तो इंसान है, हमारी औलाद तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर इतनी बड़ी बात कह देना, ये ऐसी बात है कि अगर आसमानों को ये बात आसमानों तक पहुंचे तो आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ये इतनी बुरी बात है अल्लाह ताला की औलाद ठहराना। तो ये लोग जो ऐसी झूठी बातें घड़ते हैं ना, ये फला नहीं पाएंगे ना दुनिया में ना आखरत में, इनकी कोई सर्वेशन नहीं है। मताउन फिर दुनिया, दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा हो सकता है उठा ले, थोड़ा फायदा इनको मिल जाए, यानी दुनिया में कुछ ऐशो इशरत मिल जाएगा, कोई लोग फॉलोइंग करने लगेंगे, कोई लोग बड़ा समझने लगेंगे, कोई पैसा मिल जाएगा ऐसी झूठी बातें बना बना के करने से, ऐसे शोला बयानी से लोग कोई मुरीद बन जाएंगे, कोई उनके खिदमतें करेंगे, चलो लेकिन कितनी देर होगा, ये चंद दिन का फायदा है, उठा लें फिर ये फायदा। सुम्मा इलैना मर्जिहुम, फिर हमारी तरफ लौटना है उनका, सुम्मा नुदीकुहुम अलअज़ाब अश्शदीद, फिर हम चखाएंगे इनको शदीद अजाब, इस वजह से अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से कि वो कुफर करते थे। इसको कुफर कहा गया अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने को। देखिए मैं और आप जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह की कायनात में, हमारे ऊपर कोई झूठ बांधे तो हम उसे लड़ने खड़े हो जाते कि तुमने मेरे ऊपर ऐसी बात कैसे कह दी, मैंने तो ये कहा ही नहीं था। और कहाँ रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के ऊपर झूठ बांधना कि जो बात उसने ना कही, ना उसने कहा ये मेरी औलाद है, ना उसने वो काम कहे, ना उसने वो बातें कही, अल्लाह के ऊपर वो बातें लगा देना झूठ घड़ घड़ के अपनी तरफ से, पता है कि कितना बड़ा जुर्म है ये। और इसके बाद ये जो, क्योंकि यहाँ पे अभी शिर्क की बात हो रही है, अल्लाह के औलाद ठहराने की बात और इस तरह के लोगों की बात जिन्होंने ऐसे ही शिर्क किए और उनका अंजाम, तो इसके बाद उस कौम का सबसे पहले जिक्र किया गया जिनसे शिर्क शुरू हुआ था। अब वो पता है जब आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में, बल्कि उनके बाद भी कहा जाता है 10 जमानों तक, यानी 1000 साल तक, 10 सदियों तक कोई शिर्क नहीं था, इसके बाद शिर्क शुरू हुआ और तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया। तो यहां से अब इस सूरत में अंबिया के किस्से शुरू हो रहे हैं, और इन किस्सों को बताने की वजह क्या है? सबसे पहली एक वजह तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को तसल्ली देना कि ये आपके साथ सिर्फ नहीं हो रहा, ये पिछले नबियों के साथ भी ऐसा ही होता रहा, और आपके सहाबा को भी ये तसल्ली देना कि देखो आपको ही नहीं सताया जा रहा, अंबिया को तक को सताया गया, उनका इनकार किया गया, उनकी मुखालफत की गई, बावजूद इसके कि वो तो मौजज़े लेकर आए थे, साफ शफाफ मौजज़े वाज़े दलाइल लेकर आए, फिर भी नहीं लोग माने। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, लोगों की पहले भी आदत है। और फिर उसके बाद उनको तसल्ली देना कि देखो फिर उसके बाद जीत किसकी हुई, कामयाबी किसको मिली, और कुफार को वार्निंग दे देना इन किस्सों से कि वो इन किस्सों से ये इबरत लें कि जो नबियों की मुखालफत करते हैं फिर उनका हाल क्या होता है, वो जलील और रुसवाई होते हैं और अजाब का शिकार होते हैं। तो ये बताना जरूरी था, ये लोगों तक पहुंचाया गया इन किस्सों के जरिए। तो अब यहां पे देखें कि नूह अलैहिस्सलाम की बात कही कि वतलू अलैहिम, आप तिलावत करके पढ़ के सुना दें, ए नबी आप पढ़ के सुना दें इन पर, यानी इन लोगों को पढ़ के सुना दें क्या नबा नूह, नूह अलैहिस्सलाम की खबर। इज कौला लिकौमी, जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, या कौमी ए मेरी कौम, नबी जो होते ना बड़े ही खैर ख्वाह होते थे अपनी कौमों के, पर उनको इतनी शफकत उनकी बातों में भी झलकती थी कि हालांकि कौम काफिर है, ऐसे नहीं है कि कोई मोमिन मुत्तकीन को नहीं कह रहा है या कौम, ये काफिर मुशरिक कौम है, फिर भी कहते हैं मेरी कौम। यानी आपको पता चलता है कि जब आप दावा का काम करने लगते हैं ना, तो लोगों के साथ नफरतें करने से काम नहीं होगा, ये लोगों के साथ शफकत के साथ, लोगों के साथ खैरख्वाही के जज्बे के साथ आप काम करेंगे तो तब उन तक आपकी बात पहुंचेगी। तो या कौमी ए मेरी कौम, इन काना कबुर अलैकुम, अगर है तुम्हारे पर भारी मकामी, मेरा खड़ा करना, मेरा खड़ा होना, यानी मैं तो तुम्हें जो तबलीग करता हूँ, जो दावत दे रहा हूँ, वो तुम्हारे ऊपर भारी है, गरा गुजर रहा है तुम पे, मेरा रिमाइंडर देना, मेरा तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाना तुम्हें बड़ी मुसीबत लग रहा है। और वाकई कई लोगों को ये बात भी गरा गुजरती है, उनके ऊपर ऐसे भारी हो जाती है जैसे उनके ऊपर भारी पत्थर रख दिया, या हमें क्यों बता रही है बातें, हमें क्यों अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है, उनके लिए एक बोझ होती है। और मेरा खड़ा होना और मेरा नसीहत करना अल्लाह की आयात के साथ, वो भी अल्लाह की आयात के जरिए इसका मतलब तबलीग करते थे कि अल्लाह की आयात के साथ मेरा नसीहत करना तुम पे भारी होता है और मेरा खड़ा होना तुम पे भारी होता है। तो फअलल्लाह ही तवक्कल, तो आगे ये नहीं कहा तो फिर मैं नहीं करता, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है मेरा वजूद, मेरा बुलाना तुम्हें अल्लाह की तरफ, तो फिर मैं ठीक है नहीं बुलाता, ये नहीं कहा उन्होंने। आगे से देखे अंबिया कैसे डट के खड़े होते थे, फअलल्लाह ही तवक्कल, तो अल्लाह पे मेरा भरोसा है, फिर तुम ऐसा करो, तुम कुछ करो, मैंने तो हटना नहीं है, फिर तुम ऐसा करो, तुम अजमियाऊ अमरकुम, तुम जमा कर लो अपना काम, यानी तुम मिलके एक फैसला कर लो, इकट्ठे होके जमा कर लो, यानी मिलके जमा होके कोई इकट्ठे होके कोई तदबीर कर लो, कोई फैसला कर लो मेरे बारे में, और शुरकाकुम, और अपने शरीकों को भी साथ मिला लो, उनको भी साथ शामिल कर लो, उनको भी जमा कर लो और प्लानिंग कर लो मेरे बारे में। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन, फिर ना हो फैसला तुम्हारा तुम पर मख्फी, यानी बिल्कुल एक पेज पे आ जाओ, कोई चीज की कंफ्यूजन ना रहे, सब बिल्कुल क्लियर हो, कोई चीज छुपी भी ना रहे, बिल्कुल अच्छी एक प्लानिंग कर ली, बिल्कुल फैसला कर लिया, क्लियर फैसला, क्लियर जहन के साथ फैसला कर लिया, सुम मकदू इलैया, फिर कर गुजरो मेरी तरफ, वला तुम जिरून, और ना तुम मोहलत देना मुझको, मुझे मोहलत भी ना देना कि मैं कुछ अपनी कोई तैयारी करूं, कोई अपने लश्कर तैयार करूं, कोई मोहलत ना देना मेरे साथ, फिर जो करना है तुमने कर लो, तुम मकदू ही लैया का मतलब क्या, जो करना कर लो मेरे बारे में। कितना खुला चैलेंज है, ये चैलेंज वही दे सकता है जिसके दिल के अंदर तौहीद रासे हो, वरना अक्सर लोग क्या होते हैं, वो तो डर ही जाते हैं, अगर कोई कहे आए अगर आपने ऐसी बात कही तो ये बुजुर्ग आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके बच्चे मर जाएंगे, आपके कारोबार तबाह हो जाएगा, देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तो वो खातून फौरन डर जाती, हाय हाय कहीं मुझे इनके कुछ लग ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं की बद्दुआ ना लग जाए, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो तो नहीं कह रहे तुम्हारी बद्दुआ ना लग जाए, मुशरिक है वो लोग, और उनको ये बात कहनी कि ये बहुत, यानी इनका ईमान कितना मजबूत होगा कि आई डोंट केयर, कुछ करना है करो, बद्दुआएं देनी है, मेरा कुछ बिगाड़ना है, मुझे कत्ल करना है, जो मेरे खिलाफ करना है करो, मेरा कोई नुकसान करना है, मेरी कोई तबाही के प्लान बनाने हैं, वो अच्छी तरह बनाओ, सारे मिलके बना लो, वो सारों को अपने शरीकों को भी साथ मिला लो, जिनको तुम खुदा समझते हो ना, तो मेरा कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ो, समझ आई बात? मेरा जो बिगाड़ना है, मेरे साथ जो करना है करो, आप मुझे मोहलत भी ना देना। तो हम क्यों फिर डर जाते हैं ऐसी बातों पे आके? हम क्यों कभी किसी की बद्दुआ से डर जाते हैं? भाई आप उनको तौहीद की बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम तबाह हो जाओगे, तुम अगर इनको बुरा कहोगे तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम इनको गलत ना कहो वरना तुम्हारा पता नहीं दुनिया तो आखिरत खराब हो जाएगी। तो इतने डरने की क्या बात होती है? क्या है? हम समझते हैं वाकई कि उनके हाथ में इतनी ताकत है? क्या हम समझते हैं वाकई कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? क्या हम समझते हैं वाकई कि उनके भी खुदा के साथ कुछ अल्लाह ताला की इख्तियार में वो भी शरीक है, उसकी बादशाहत में वो भी शरीक है? पर समझते हैं तो फिर किस चीज का पैगाम दे रहे हैं? फिर तौहीद का क्या चर्चा कर रहे हैं? आप तो खुद ही फिर आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं। ये होती है स्ट्रांग बेस, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही इसी तरह का चैलेंज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दिया था, उन्होंने भी कहा था कि मुझे मैं डरता नहीं हूं तुम्हारे शरीकों से, जो करना कर लो। और ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत का आखिरी मोड़ था, यानी बहुत समझा चुके थे। और आपको पता है हम आगे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अल्लाह ने तौफीक दी तो सूरह नूह पे जब पहुंचेंगे तो फिर 29 जुज में तो पूरी सूरत ही नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग, और इस बारे में आप पढ़ना चाहें तो वहां से आप पूरी इनकी तबलीग के पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। फैन तबल्लई तुम, फिर अगर मुंह फेरा तुमने, फमा साल तो कुमें अजर, फिर अगर तुम नहीं पसंद करते मेरे बताने को तो मैं कौन सा तुमसे कुछ मांग रहा हूं कि तुम्हें कुछ मुझे देना पड़ रहा है कि जिसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो। इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है। पहले भी सूरह आराफ में भी पढ़ चुके हैं कि पैगंबर जो थे ना वो लोगों को तबलीग करते थे लेकिन उनसे कुछ मांगते नहीं थे। हाँ हमेशा ये कहते थे हमारा अजर तो अल्लाह के पास है, हमने तुमसे कुछ लेना ही नहीं। वह उमिर तो अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मैं तो हुक्म दिया गया हूं कि मैं मुसलमानों में से हो जाऊं। मुस्लिम उस वक्त भी मुस्लिम थे, ये नूह अलैहि सलाम की बात हो रही है। जी हाँ, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है शुरू से। तो बाद में लोगों ने अपने अपने अदियान के और नाम रख लिए, वरना जो अल्लाह की तरफ से दीन आया वो इस्लाम ही था। इस वो फिर यहूदी बन गया, फिर कोई ईसाई बन गया। और इस्लाम का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, अपनी विल को सरेंडर कर देना, मुती हो जाना, इताद गुजारी, मुकम्मल सबमिशन, फरमा बरदारी, और तभी इंसान सलामत रह सकता है, पीस में आ सकता है। फकद्दबूहु फनजैनाहु, तो उन्होंने झुठला दिया उसको, नहीं मानी उसकी बात, तो हमने निजात दे दी उसको भी, वह ममाहू और जो उसके साथ थे, फिलफुल कश्ती में। और सबको पता है ये सारा किस्सा, वह जालना हम खलाइफा, और बनाया हमने उनको जानशीन। कैसे जानशीन बनाया? खल्फ कहते हैं ना पीछे, पीछे आने वाला, खलीफा भी इसी से है, खलीफा की जमाई खलाइफ। तो यानी पीछे आने वाला इनको बना दिया, यानी अब इसके बाद जो आगे नस्ले इंसानी चली वो सिर्फ इनसे ही चली। नूह अलैहिस्सलाम के जो तीन बेटे थे, हाम याम हाम साम याफिस, तो उनसे फिर नस्ले इंसानी चली थी, बाकी दुनिया तबाह हो गई थी जो भी कश्ती से बाहर थे। फिर ऐसा अजाब आया कि कोई भी नहीं बाकी रहा। कहा जाता है 6 महीने तक ये जारी रहा और पानी इतना बुलंद हो गया कि पहाड़ भी उसमें गर्क हो गए। वागरकनल्लदीन कज़्ज़बू बी आयातिना, और गर्क कर दिया हमने उन लोगों को जिन्होंने झुठलाया हमारी आयात को। फंदुर कैफ काना आक़िबतुल मुनज़रीन, फिर देखो कैसे अंजाम हुआ डराए जाने वालों का। कहीं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देखो अल्लाह की निशानियों को, उनको देखो, इसके अंदर भी आयात है, इसके अंदर भी निशानी है। कहीं अल्लाह ताला कौमों के जरिए हमें बता रहे हैं, कहीं अल्लाह ताला कायनात को दिखा के हमें बता रहे हैं कि देख लो फिर अंजामे कार क्या होता है, देख लो फिर अल्लाह ताला की तरफ जो नहीं आते और उसको झुटलाते हैं और उसकी आयात को झुटलाते हैं और उसके रसूलों को नहीं मानते, फिर उनका अंजाम क्या होता है। वो सब जो अकड़ रहे थे, जो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे अल्लाह की आयात को समझते थे कि हमें इनको मानने की जरूरत ही नहीं है, हम इनके बगैर ही सही हैं। तो देखो उनके साथ क्या हुआ। और वो लोग जो समझते थे कि नूह अलैहिस्सलाम को तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और इनकी तो बातें हमें पसंद ही नहीं है, देखो फिर किधर चले गए। सुम्मा बात ना मिन बाद ही रसूला, फिर भेजा हमने इसके बाद कई रसूलों को। नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी कितने ही रसूल आए। देखें आदम अलैहिस्सलाम के बाद कहा जाता है इदरीस अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी और पैगंबर आए, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में कितने रसूल आए। तो सबको, बहुत सारे रसूलों को भेजा, इला कौमिहिम, उनकी कौम की तरफ। सब कोई भी इनमें यूनिवर्सल नहीं बना के भेजा गया, पूरी इंसानियत की तरफ, अपनी अपनी कौमों की तरफ सिर्फ भेजे गए। ये आप ये जो तबलीग करने निकलते हैं कि जो है ईसाइत की तबलीग कर रहे हैं, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम तो सबकी तरफ नहीं आए थे, वो तो सिर्फ बनी इसराइल की तरफ आए थे, अपनी कौम की तरफ आए थे। तो अब दुनिया जहान के अंदर ये तबलीग कर रहे हैं जबकि ये बनता भी नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए आए। फजाउम बिलबैनात, सबको अल्लाह ताला ने दलाइल दिए, मोजजात दिए, रोशन निशानियां दी कि वो लेकर आए लोगों के पास। फमा कानू लियूमिनो, तो नहीं थे वो ईमान लाते, लोग फिर नहीं मानते थे, नहीं मान के दिया। आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, तो कितने लोग ईमान लेकर आए, 80 ओनली, सिर्फ 80 लोग। अब आप सोचेंगे कि 100 साल में भी 10 से ज्यादा लोग नहीं ईमान लेकर आए, 100 साल में भी 950 साल, छोटी बात नहीं होती। वो ईमान नहीं लाए, किस वजह से नहीं लाते थे ईमान? रोशन निशानियां भी थी, नबियों का किरदार भी ऐसा होता था कि कोई देख ही ले तो ईमान ले आए, लेकिन बीमा करता वो भी मिन कबल। ये एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया कि इंसान की साइकी ऐसी है कि उस जब वो एक दफा इनकार कर देता है ना कि मैंने नहीं मानना, मैंने ये सही समझती, तो अब उसकी अना का मसला बन जाता है कि अब मैं मानू तो मानू कैसे। जैसे कई लोग बाद में उनको पता भी चल जाए ना कि मैं रॉन्ग थी, तो अब माने कैसे कि आई वॉज रॉन्ग। नहीं, वो फिर इधर उधर की ताबीलें देने लगते, नहीं ना मैंने तो इसलिए कहा था, मैंने तो ये करा था, क्योंकि अब मानने कैसे कि मैं रॉन्ग थी, ये अपने आप को मान लेना ना कि मैंने जो शुरू में कहा था वो रॉन्ग था, ये लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है। इसीलिए अक्सर लोग माफी भी नहीं मांगते, कहते मैं कैसे सोच लूं कि मैंने गलत किया, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है। तो यही प्रॉब्लम रहा लोगों का, वजह इसकी कि उन्होंने जुटला दिया पहली दफा, जो पहले उनके पास बात आई ना उन्होंने उस वक्त कह दिया नहीं। और खास तौर पे जो मुतरफीन होते थे, जो मला होते थे, सरदार होते थे, उनके लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता था। हम इतनी बड़ी चीज अब हम लोगों को कहें, पहले ये लोग कहेंगे पहले तो कहते थे कि गलत है और अब मान के बैठ गए, ये कैसे हम कह दें कि हाँ पहले हमने गलत की कहा था, हमने समझा नहीं था, हमने अपने आप को गलत कह दें, नहीं हमने नहीं मानना। अब वो नहीं मान के देते, और ये बहुत आप कॉमन देखेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो मुश्किल है समझनी, क्योंकि ये लोगों के आम रवैयों में आप देखेंगे, आम लोगों की साइकी में आप देखेंगे। बस एक दफा कह दिया तो अब आप अपनी बात को कैसे मैं झुटला दूं कि अपनी बात को ही कह दूं कि मेरी बात झूठी थी, मेरी बात गलत थी, लोगों ये यही सही कहते थे, ये कैसे कह दूं, मेरी इज्जत का मामला है, तो वो फिर मान के नहीं देते। कज़ालिक नतबअ अला कुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह हम मोहर लगा देते हैं दिलों पर हद से बढ़ने वालों की। जो इस तरह के हद से बड़े हुए लोग होते हैं ना, जो इंसाफ की बात नहीं करनी, उन्होंने बस ये देखना कि मेरी इज्जत किसके अंदर है, मेरी आना, हद से बढ़ जाते हैं इसमें। अब मैं कैसे बता दूं कि मैं गलत कभी हो सकती हूं? तो जब इंसान इतना अपनी अपना ही पुजारी बन जाए, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले, और जब इंसान अपनी आप को ही बड़ी चीज, इतनी बड़ी समझने लगे, तो फिर ऐसे लोगों के दिलों पर भी मुहर लगा देता है अल्लाह ताला, फिर वो मान मान के ही नहीं देता। कैसे माने ना। अल्लाह अकबर। सुम्मा बासना में बाद ही मूसा वहारून। और इनके बाद इमीडिएटली नहीं, बल्कि यहाँ पे पैगंबरों के बाद कहा जा रहा है, नूह अलैहि सलाम के बाद नहीं, मिन बादिहिम, इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहि सलाम को भी भेजा। और ये किस्सा भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा हम इसको जरा तेजी से गुजरेंगे। तो किसकी तरफ? इला फिरौन व मलाइही, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ। और ऐसे ही नहीं भेज दिया, भी आयात ही ना हमारी अपनी निशानियां देके भेजा था, मोजजात देके भेजा था। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या था? फस्तकबर, तकबर ही होता है ना। इसीलिए तो इंसान, ये भी तकबर ही है कि इंसान कहता है मैंने एक दफा जो कह दिया कि मैंने नहीं मानना, ये गलत है, तो अब मैं सही उसको कैसे कहूँ, ये भी इसके पीछे तकबर है। वकानु कौम मुजरिमीन, और ये वो लोग थे जो मुजरिम थे, मुजरिमाना जहन रखते थे, बुराई की तरफ ही थे। देखें पहले से ये फिरौन के कौन से कारनामे कोई अच्छे थे? पहले बच्चों को जिबा करना, बच्चियों को लौंडियां बना लेना, जुल्म और सितम ने इंतहा से ज्यादा कर रखा था। तो वलम्मा जाअहुमुल हक मिन इंदिना, जब हमारे हक इनके पास, हमारा हक आ गया हमारी तरफ से, कालू, उन्होंने आगे से कहा, इन हाजा ला सिहर मुबीन, ये तो खुला जादू है। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि लोगों को जब भी कोई बात समझ नहीं आती तो वो आगे से कह देते हैं बस ये जादू है जी। इवन जिंदगी के आम मसाइल में भी कह देते ये तो जादू है, हमारे ऊपर जादू कर दिया किसी ने, जब भी उनको कुछ समझ नहीं आएगा। काला मूसा, अब उस जमाने में तो वैसे ही जादू का बहुत जोर था। तो काला मूसा, मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, अतकुलूना लिल हक लम्मा जाअकुम, क्या तुम कहते हो हक को जब वो आ गया तुम्हारे पास, तुम हक को ये कह रहे हो जादू, असिहरुन हादा, क्या जादू है ये, फला युफलिहु साहिरून, और जादूगर तो कभी फला नहीं पाते। जादूगरों की जिंदगी अगर आप देखें उठा के, अल्लाह ताला माफ करे, इस कदर गलीज और गंदे अकायद वाली इनकी जिंदगी होती। जादूगर ऐसे नहीं बन जाते जिनके पास जिन्नात होते हैं या ये होते हैं, तो जिन्नात ऐसे ही उनके काम नहीं करने शुरू हो जाते। हाँ, अनलेस के कोई ऐसे बहुत ही नेक इंसान हो जिन खुद ही उनके पास आके तालीम लेने लगते हैं, या जिन उनसे नेकी से मुतासिर होके उनकी कोई खिदमत शुरू करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन खास तौर पे जादूगर जो होते हैं, जिन्होंने जिन्नों को अपने कब्जे में किया होता है, तो इसके पीछे अगर आप इनके काम देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या काम करने से ये जिन इनके ताबेदार हों। तो जादूगर तो कभी फला नहीं पा सकता, जो ऐसा काम कर रहा है जो कबीरा गुनाहों में से है, वो कैसे फला पाएगा, कैसे उसको कामयाबी मिल सकती। दुनिया में कोई वक्ती थोड़ी सी, अगर किसी को कोई ऐसे मिल गई बात जो उसने चाहा वैसा हो गया, बहुत वक्ती होता है। और जादूगर के पास अगर कंपेयर करें नबी के साथ, वैसे तो कौन सा उसके पास ऐसा कोई इसलाह का प्रोग्राम है लोगों का, कोई उनकी फलाह का, कोई उनकी आखरत में कामयाबी का कोई ऐसा प्रोग्राम वो लोगों को दे रहा होता है? तुम कैसे कह सकते हो ये जादू है? अगर जादूगर ही दुनिया में वाकई, ये मैं बता रही ना, आखरत में तो कामयाब होंगे ही नहीं, लेकिन दुनिया में भी अगर आप समझते हैं कि जादूगर कामयाब होने वाले हैं, तो ये इनको तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जादूगरों को ही होना चाहिए। बताएं मुझे किसी मुल्क का भी सरबरा कोई जादूगर है, क्यों नहीं वो ले लेता जादू से अपनी हुकूमतें, क्यों नहीं ले लेते? इसी से पता चलता है कि ये सिर्फ सिर्फ फरेब ही होता है, इनको कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। कालू, उन्होंने कहा, अजीतना, क्या तू आया हमारे पास, ली तल्फीतना, ताकि तू फेर दे हमको, अम्मा वजदना अलैहि आबाना, उससे जो हमने अपने बाप दादा को जिस पे पाया, क्या तू हमें उससे फेरने के लिए आया? अच्छा, अब बजाय इसके कि इस बात का जवाब देते कि ये क्या जादू नजर आ रहा है तुम्हें, ये क्या जो अपने मोजे वो दिखा रहे थे मूसा अलैहि सलाम, ये जादू थोड़ी है, और जादूगर तो कभी फला नहीं पा सकते। अच्छा, ये बात ना, जिनको भी ये कभी अपने ऊपर शक हो कि मुझे, मेरे ऊपर जादू कर दिया किसी ने या ऐसे कर दिया, वो ये बार बार अपने आप से कहें, ला युफ वला युफ्लिहु साहिरून, वला युफ्लिहु साहिरून, अपने आप को बताएं, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, दुनिया में भी नहीं और आखिरत में भी नहीं। तो अगर आपको ये डर लगता है किसी ने जादू कर लिया, वो तो कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया नहीं कामयाब हो सकता। तो उन्होंने बजाय इसके कि इस बात का कोई जवाब देते, अब इसका जवाब तो उनको कोई थोड़ी आता था कि हम क्या इसका जवाब दें, तो उन्होंने आगे से कहना, तुम तो ये चाहते कि हमारे जो बाप दादा से हमारा चला आ रहा था उससे हमें फेर दो। और आज तक यकीन करें यही बातें चल रही हैं। जब आप किसी को कोई बात बताते हैं तो बजाय इसके कि वो उसके हक के साथ कोई दलील दे, वो उनके पास कोई दलील तो होती नहीं, वो जज्बाती हो जाते हैं। लो हमारे तो माँ बाप भी ऐसे करते थे, तो आपका मतलब है वो गलत करते थे, हमारे तो खानदान में ऐसे होता था, अब आप हमें उससे फेरना चाहते हैं, अब उनके खिलाफ हो जाए। तो ये कौन सी लॉजिक है? अब आप चाहते हैं हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें जो हम सदियों से कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं, ये आज तक इस चीज को इंसान पता नहीं क्यों दलील बनाता है कि बाप दादा जो हमारे करें। एक मैंने बिलबोर्ड देखा पिछले दिनों, शायद दिवाली के उसके ऊपर उन्होंने लगाया होगा, तो उन्होंने कहा सेलिब्रेट हिंदुइज्म मोस्ट एंशंट जो रिलीजन है, मोस्ट एंशंट सिविलाइजेशन है। तो क्या एंशंट हो जाने से कोई चीज ठीक हो जाती है? ये किस किस्म की चीज है? किसी चीज के हक होने की क्या ये दलील है कि वो एंशंट है? यानी वो इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाए क्योंकि ये तो हमारे मतलब एंशंट का मतलब यही हो गया कि हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, इतना पुराना है, सबसे एंशंट है। तो जाहिर है नूह अलैहि सलाम से के जमाने से तो चली आ रही है चीजें, तो इसका मतलब वो ठीक हो गई। अगर लोग गुमराह हुए और गुमराही चलती गई तो वो तो कोई, ये तो कोई दलील नहीं है कि वो क्योंकि बहुत पुराना हो गया, पुराने जमाने से चला आ रहा है, इसलिए जनाब आप ये सेलिब्रेट कर। तो इसी से पता चलता है कि इनके पास कोई दलील नहीं, सिर्फ गुमान की बेसिस पे और जो कयास आ रही है। वतकून लकुमल किबरिया फिल अर्द, और हो जाए तुम दोनों के लिए किबरियाई जमीन में। और तुम इसलिए हमें ये सारा सिखा रहे हो, सारा हमारे पास आए हो ये लेके कि तुम बड़े बन जाओ जमीन में, तुम्हारी बड़ाई हो जाए जमीन में, तो तुम तो कुछ ओहदे चाहते हो। और ये भी देखिए आप, सुभान अल्लाह, इंसानों की साइकोलॉजी नहीं बदली। आज तक लोग कहते हैं बस ये तो चाहते हैं, इनके ना सियासी मोटिव्स हैं, इसके पीछे इनका एजेंडा है। आप किसी को ये कह देंगे ना, वो वैसे ही बदजान हो जाएगा। आपको नहीं पता इसके पीछे ये चाहते क्या है, साजिश है इसके पीछे। जब किसी के बारे में ये कह देना कि इसके सियासी मकासद हैं, सियासी एजेंडा है इसका, ये तो कोई कुर्सी वर्सी चाहते हैं, तो अब चाहे वो मिंबर पे खड़ा होकर खुतबा दे रहा, आपकी नजर में वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि आप ये सोचेंगे इसके तो कोई मकासद है, इसके पीछे तो पता नहीं क्या है, क्या कौन सी कौन है इनके पीछे, क्या है, ये बड़े बनना चाहते हैं, ये घूमते चाहते हैं, इकतदार चाहते हैं, बस कुर्सियों की दौड़ है और कुछ नहीं है। बस आप उसकी बात थोड़ी सुनेंगे फिर, और यही इन्होंने भी किया। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, और हमने ईमान लाने वाले हैं, यानी ये बात नहीं सुननी कि वो क्या बात बता रहे हैं, ये इल्जामात लगा के ये उनकी दलील थी ना मानने की, क्योंकि आपके आप सियासी मोटिव्स हैं, और चूंकि हम तो अपने माँ बाप दादा के रिलीजन पे हैं और हम उसी पे चलते रहेंगे, हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात। वकाला फिरौन तूनी, और फिरौन ने कहा ले आओ बिकुल्ली साहिर नाली, सारे बड़े बड़े माहिर जादूगर ले आओ। फलम्मा जा असहरा, तो फिर जब आ गए जादूगर, काल अलहम मूसा, तो कहा उनसे मूसा अलैहि सलाम से, अल्कू डालो, मा अंतुम मुल्कू, जो हो तुम डालने वाले, तुमने जो अपना फन दिखाना है, अपना शोभदा दिखाना है, वो दिखाओ। क्योंकि एक बार देखिएगा, जादू ये भी है जो जिन्नात के जरिए कराया जाता है, और वो भी जादू ही कहलाता है जो ये शोभदाबाजी करते हैं। जादू के जरिए आंखों की ऐसी नजरबंदी सी कर देते हैं ना कि इंसान को वो चीज कुछ से कुछ नजर आने लगती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जादूगरों ने रस्सियां डाली और लाठियां डाली और सारे लोगों को, पूरे क्राउड को वो सांप नजर आने लगे, इवन मूसा अलैहि सलाम को भी। तो ये नजरबंदी थी, इसीलिए सूरह ताहा में है ना कि वो खौफजदा हुए मूसा अलैहि सलाम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप अपना असर डालें, तो वो रस्सियां थोड़ी सांप बन गई थी, लेकिन देखो कैसी शोभदाबाजी। इसी तरह मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा इस बारे में आप क्या कहती हैं, हमने तो वो कोई जादू के कोई शोज होते हैं तो वो देखने गए, को बहुत ही बड़ा जादूगर कहती है आया हुआ था, वो टिकट्स लेकर बाकायदा गए। तो ये चीजें भी ऐसी ना, हराम है इस तरह के कामों को जाके देखना। उनने कहा उसने देखिए हमारे सामने एक बंदे को ऑडियंस में से बुलाया, उसने वहां पे उसको रखा, फिर उसने उसको बीच में से काट दिया, फिर उसके बाद उसको जिंदा कर दिया। अल्लाह हू अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ये काम तो दिज्जाल करेगा। ऐसे काम करना इटसेल्फ ही एक हराम चीज, ऐसा दिखाना भी एक हराम चीज है कि कोई जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, जब हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जिंदगी और मौत देने वाला है। वो उसने उसको खत्म किया, कोई खून वगैरह नहीं निकला, बस वो काटा और उसके बाद उसको दोबारा जोड़ दिया। तो कहने लगी ऐसे उसने हमें दिखाया, तो अब बताइए इसका क्या है। अब देखिए इस तरह के शोभे तो वो उस वक्त भी दिखाते थे, अब इसका आप क्या कहेंगे कि वो जादूगरों और रस्सियां और उन्होंने लाठियां डाली वो सांप बन गए। वो सांप रियलिटी में थोड़ी सांप बने थे, वो तो एक नजर का ऐसा ऐसी चीज होती है, इसीलिए तो उसको जादू कहते हैं ना। ऐसा वो नजर के ऊपर नजरबंदी जिसको कह सकते हैं कर देते हैं कि इंसान को यही लगता है कि ऐसा ही है। और इसी तरह जो लोगों पे भी जादू करते हैं वो भी उन बेचारे लोगों को कुछ से कुछ नजर आने लगता है, कुछ से कुछ चीजें पता चलने लगती हैं, तो वो एक नजरबंदी होती है, मुझे ऐसे नजर आ रहा है, मुझे ये हो रहा है। फलम्मा अलकौ, जब उन्होंने डाला, काला मूसा मां जी तुम भी हिस्से, तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया जो तुम लाए हो ना ये है जादू, तुम मुझे कह रहे थे वो जादू है, वो जादू नहीं है, ये है जादू जो तुम लेकर आए। इन अल्लाह सयुबतिलुहू, बेशक अल्लाह ताला अनकरीब इसको बातिल कर देगा। इन अल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला मुफ्सिदों के अमल को नहीं संवारता। यानी ये मुफ्सिद हैं जो जादूगर हैं, ये फसाद करने वाले। आप देख लें जादूगरों का काम कभी सलाह थोड़ी होता है। कभी आपने कोई जादूगर देखा है कि कोई नेक बन जाए इसके लिए वो जादू कर रहा है, ये कबड़ी कुबड़ी सारे अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए, बड़ा अल्लाह वाला बन जाए इसके लिए वो कर रहा है? हमेशा कोई ना कोई उल्टी सीधी चीजें होती हैं जिनके ऊपर ये जादू कर रहे हैं, और काले जादू की काट फलां ये वो। ठीक है जादू बरहक है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, अल्लाह इनके कामों को संवारता नहीं और ये कभी फला नहीं पा सकते। इतना ही इनका काम आपको पनपता व नजर आए कि बड़ा फ्लरिश कर रहे हैं, बड़ा नाम है, बड़ा नहीं, अल्लाह ताला मुफसिदों के कामों की सलाह नहीं करेगा इसमें। यानी इसके को इनके कामों में कोई खैर नहीं होगी, कोई बरकत नहीं होगी, बिगाड़ ही बिगाड़ होगा, अल्लाह की मदद नहीं शामिल होती इसमें। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह फसादियों के कामों की सलाह नहीं करता, उनको बाबरकत नहीं बनाता। तो इसका मतलब ये सिर्फ जादूगरों के लिए नहीं, हर फसादी कोई भी फसाद करने वाला है वो समझे ना कि मैं बड़ी सलाह कर रहा हूं। फसाद फसाद ही है, फसाद का तरीका करने से सलाह नहीं हो जाती। और जादू का इलाज भी जादू से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक फसाद का तरीका, फसाद से आप फसाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो युहिक्कुल्लाहु अल-हक्का बिकलिमातिही, और अल्लाह ताला साबित करता है हक को अपनी कलिमात के जरिए। अल्लाह ताला हक को भी साबित कर देता है, जाहिर कर देता है हक को, कि हक गालिब आता है, अपने कलिमात के जरिए अल्लाह ताला जाहिर कर देता है। यानी अल्लाह ताला सामने सबके ले आता है, वो प्रिवेल करता है जो हक होता है। अल्लाह करियल मुजरिमून, मुजरिमों को तो कभी हक पसंद नहीं आता, तो चाहे वो नापसंद भी करें अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं, वो जरूर साबित करके रखता है आपको। तो मूसा अलैहि सलाम को भी देखें कामयाबी मिली, इनको नहीं कामयाबी मिली। मुजरिम लोग नहीं चाहेंगे कि हक सामने आए, लेकिन अल्लाह जाहिर करके रहता है। अल्लाह ताला हमेशा हमें हक के साथ खड़े रहने वाला रखे, और अल्लाह ताला हमें बातिल से बचाए, बातिल को दिखा के। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون